जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भिष्ट डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री पुत्रदाय एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु मेन गौरांगा। हरे कृष्णा। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों की इतनी संख्या देख करके। तो आज नया वर्ष का जो है पवित्र दिन है, तो आज के दिन हमें कैसे शुभकामना देना चाहिए। नया वर्ष क्या हो, कृष्ण भावना भावित हो, ठीक है ना। लोग तो कई तरह से बोलते हैं नया वर्ष मुबारक हो, नए वर्ष की शुभकामनाएं, तो कई तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं नए वर्ष के लिए। लेकिन हमारा उत्तर क्या होता है, नया वर्ष कृष्ण भावना भावित हो। हम कहते हैं कि विश यू ए हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि किसी के भी शुभकामना का उत्तर देना है तो इस तरह से देना है, ठीक है ना। विश यू ए हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर, है ना। या कहें आपको नया वर्ष कृष्ण भावना भावित हो, है ना। हम लोग इस तरह से उत्तर देते हैं। तो ये जो प्रभुपाल लीलामृत से जो हम पाठ कर रहे हैं एकादशी को, तो चूंकि पुस्तक वितरण का समय है तो ये अलग ही प्रकरण है जिसमें कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए, इसमें पाठ किया जा रहा है। तो मुझे पता नहीं पहले कहाँ तक पाठ किया गया था, तो मैं यहाँ से पाठ कर रहा हूँ जिसमें जनवरी 1972 लिखा हुआ है। तो चूंकि जनवरी आज जनवरी का महीना शुरू हो रहा है, तो जनवरी 1972 से जो शुरू हो रहा है तो इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्रील प्रभुपाद ने जगदीश को लिखा, मेरी पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में तुम्हें हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने नई विधि नहीं दी। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं प्रभुपाद की लीला में, वो क्या है कि प्रभुपाद ने कोई नई विधि नहीं दी, प्रभुपाद ने कोई विधि नहीं दी कि कैसे पुस्तकों का वितरण करना है ना। ये प्रभुपाद ने ये भार डाला अपने शिष्यों के ऊपर, ये भार डाला कि आप नई विधियों को खोजिए, है ना। अब भक्तों ने खोजी, ये सब नई विधियां खोजी भक्तों ने, धन्यवाद। तो भक्तों ने नई विधि खोजी, है ना। तो कैसे खोजी, सड़कों में जो है मतलब जाते थे भक्त लोग, घर घर में जाते थे या किसी कार्यालय में जाते थे, है? और नई विधि कैसे खोजी, जैसे मोहन रूपा प्रभु एक व्यक्ति से ही जो है हजार हजार गीता प्रयोजित करा लेते हैं। तो ये सब जो है हरिबोल हरिबोल। तो प्रभुपाद ने क्या है कि भार डाला भक्तों के ऊपर, है कि अपने दिमाग में जो है इस चीज का जो है मतलब चिंतन करो, सोचो, खोजो, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मेरी पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में तुम्हें हमेशा सोचते रहना चाहिए। और भक्तों ने नई विधियां ढूंढ निकाली, क्रय विक्रय के केंद्र, जनसंकुल मार्ग। जनसंकुल मार्ग का मतलब क्या है कि ऐसे रास्ते जहां बहुत भीड़ होती है लोगों की, तो भक्तों को क्या है उस समय अवसर मिल जाता है, तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति को रुकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भक्त लोग जो है पुस्तकें दिखाते हैं। और वाहन खड़े करने के स्थान, तो वहां पर लोग जरूर आएंगे, अपनी गाड़ी को लेने की जरूरत आएंगे, तो पार्किंग, पार्किंग प्लेस, वाहन खड़े करने के स्थान। अब पहले से अधिक लोगों से मिल रहे थे। जनसंकुल मार्गों और क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल तक हो गई। तो ये हृदय में पहुंच गई, हृदय के स्थान में पहुंच गई, अमेरिका के हृदय के स्थान में पहुंच गए, है ना। क्योंकि अमेरिका का हृदय क्या है, क्रय विक्रय के जो स्थान है, अमेरिका का हृदय है जहां खरीद चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, उन स्थानों में भक्तों पहुंच गए। आगे, अब उनकी भेंट धर्मिष्ठों, पापिष्ठों, धनी, निर्धन, काले, श्वेत सभी तरह के लोगों से होने लगे। क्योंकि इन पुस्तकों में जो है एक विशेषता यह है कि इसमें कोई विचार नहीं किया जाता है कि किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, है ना। हर व्यक्ति को आप पुस्तक दे सकते हैं, जबकि गीता में भगवान ने मना किया है, कि यह संदेश नहीं देना, है ना। यदम तेना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं, बताना एकदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन है ना, जो भक्त नहीं उसको नहीं है ये संदेश देना है। चार सौ श्रू सभे वाच्यम, और जो सुनना नहीं चाहता है या जो सेवा नहीं करना चाहता है उसको नहीं बताना। नजमाम जो विश्वयति, जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। तो ना 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 चार बार भगवान ने ना 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 बोला कि नहीं बताना नहीं बताना। ये पुस्तक के रूप में आप दे सकते हैं, क्योंकि उस समय पुस्तकों का वितरण नहीं होता था, पुस्तकों की सफाई होती नहीं थी, इसलिए गीता में भगवान ने पुस्तक वितरण की चर्चा नहीं की है। हरिओम लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी अब जो है, मतलब जो अभी हुई पुस्तकों की छपाई की, तो पुस्तक के रूप में आप दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो पुस्तक के रूप में जो है कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई इसको नहीं देना इसको नहीं देना, है ना। क्योंकि पुस्तक के रूप में आप उसको दे रहे हैं तो आप उसका टाइम नहीं ले रहे हैं, उसको आप कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना। तो वो पुस्तक आपने उसको दी है, हरि बोल, पुस्तक उसको जो दी है तो वो आपने अपना काम कर दिया। अब उसकी जब इच्छा होगी वो पढ़ेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं पढ़ेगा। तो आप उसको कोई मतलब मजबूर नहीं कर रहे हैं कि भाई ये किताब पढ़ो ही, लेकिन आप दे रहे हैं तो आपने अपना पूरा काम कर दिया, पूरा काम कर दिया। तो इसलिए पुस्तक वितरण, साहित्य के वितरण के द्वारा कोई भी प्रचार है वो बहुत सफल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है प्रचार, क्योंकि इसमें आपने जो है पूरा का पूरा संदेश भी दे दिया और उसका आपने समय नहीं लिया, क्योंकि वो अपने मतलब उसके पास समय नहीं है, अपने दूसरी व्यग्रता में वो जो है कहीं जा रहा है, है व्यस्त है किसी कार्य में, है ना। तो इस तरह से आप पुस्तक किसी को भी दे सकते हैं और उसमें भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है कि भाई नहीं दे, इसको पुस्तक नहीं देना, इसको पुस्तक नहीं देना, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक बताने की बात है, भाई कोई भक्ति भी हो, भक्ति भी हो, लेकिन अश्रुश्रु है, यानी उसके पास समय नहीं सुनने का, तो आप उसको भी मत बताइए। भक्ति भी हो तो भी, तपस्वी भी हो, भक्त नहीं तो भी नहीं बताना, और भक्ति भी हो, तपस्वी हो, भक्ति भी हो, शुश्रूषु नहीं है, सुनने की स्थिति में नहीं है तो भी नहीं बताना। लेकिन ये जो पुस्तक है ये आप किसी को भी दे सकते हैं। तो वो जो है अब 10 साल के बाद पढ़े, 20 साल के बाद पढ़े, या उसके घर में कोई दूसरे व्यक्ति आगे उठाए, या कोई आत्मा पैदा होगी उसके घर में, है तो पुस्तक ऐसा वातावरण पैदा करेगी है कि कोई उसको जो है उसका कोई ग्राहक बनेगा। तो पुस्तक स्वयं ही अपने ग्राहक को बुलाएगी। तो आपने उसको दे दिया तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि बीज आपने आरोपित कर दिया, तो कोई कोई बीज 20 साल के बाद फल पैदा करता है, कोई बीज 1 साल के बाद फल पैदा करता है। उसी प्रकार से पुस्तक हैं, ये फल पैदा करेंगी, लेकिन 1 साल के बाद या 1 महीने के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, है ना, तो अलग बात है। लेकिन आपने अपना काम कर दिया कि बीजारोपण कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भक्तों के भेंट धर्मिष्ठों पापिष्ठों, पापिष्ठों का मतलब पाप ही पाप में लगे हुए हैं, है ना, धनी और निर्धन, काले और श्वेत यानी गोरे, सभी तरह के लोगों से होने लगी। पुस्तकों की बिक्री अभी कठिन बनी रही, किंतु भक्त धैर्य का परिचय देते रहे। यहाँ धैर्य की बहुत आवश्यकता है। ये पुस्तकों के भारी गट्ठर ढोते रहे और उस साहित्य का वितरण करते रहे जो उनकी समझ में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था। तो एक बात जो है समझना है, जो भक्त पुस्तक बेचने वाले हैं तो उनको एक बार समझना है क्या कि ये जो साहित्य है ये सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है, और कोई दूसरी आशा नहीं है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देयर इज नो वे। तो इस बात को समझना है, आपके दिमाग में ये बात जो अच्छी प्रकार से बैठी है होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से बैठना चाहिए कि इन पुस्तकों के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान है। आगे, भक्त खरीदारों को भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकारों के रूप में देखते थे। भक्त को कैसे देखते थे, तो प्रभुपाद ने दृष्टि दी ना कि संसार को किस प्रकार देखना है, भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकार। भौतिक शक्ति यानी माया, माया शक्ति है, तो माया में कैसे ये जो है जीव बंधे हुए हैं और ये शिकार बने हुए हैं माया के, है ना। तो वे सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन माया उनको जो है किस प्रकार से बांधे है, और माया में बंधे हुए वे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं, है? और कष्ट भोग रहे हैं। तो जो भक्तों की दृष्टि है, जो पुस्तक बेचने वाले भक्त हैं उनकी दृष्टि में ऐसी कि आप ही जो है इनकी रक्षा करने के लिए ये पुस्तक दे रहे हैं, आप ही जो है सबसे बड़ी रक्षा करने वाले हैं, हैं? जो आप पुस्तक दे रहे हैं आपको ये समझना है। लोगों को केवल इंद्रिय और मानसिक सुख के निमित्त जीते देखते थे, बस इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल इंद्रिय तृप्ति और मन की तृप्ति जो कि अनित्य है, और फिर शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे और अज्ञान में कुछ नहीं जानेंगे कि उनको कैसा शरीर मिल रहा है, और बार बार शरीर मिल रहा है, बार बार 84 लाख योनियों में शरीर मिलता जा रहा है, बार बार जन्म मरण जन्म मरण, और उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि पहले कौन सा शरीर था, अभी दूसरा शरीर कौन सा मिल गया, अभी उनको छिपकली का शरीर मिल गया है, उनको मकड़ी का शरीर मिल गया है, उनको वृक्ष का शरीर मिल गया है ना, और मनुष्य का शरीर मिला है इसमें उनकी जो है चेतना ही नहीं है कि अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिनकी दारुण मृत्यु अवश्यंभावी है, तो जब आप भक्त जब भक्त लोग जो है पुस्तक बेचते हैं, तो मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में आप पुस्तक देते हैं तो आपकी ये चेतना होनी चाहिए कि मृत्यु मृत्यु से बंधा हुआ है और आप उसको मृत्यु से छुड़ा रहे हैं। आप उसके हाथ में पुस्तक जो दे रहे हैं आप उसकी बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं कि आप उसको मृत्यु से छुड़ा रहे हैं, है ना। जैसे कोई रोगी होता है ना, मरने वाला है, और जो है उसको आप कोई दवाई दें जिससे कि उसकी रक्षा हो जाए, है ना, और वो ना लेना चाहे, वो अलग बात है, वो नहीं लेना चाहता है, वो अज्ञान में वो नहीं जानता है कि उसको क्या आवश्यक है, उसकी किस चीज की आवश्यकता है, वो नहीं जानता है ना। तो ऐसी जो है स्थिति आगे, कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकतावादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जितने भी भक्त हैं वो इतने गंभीर थे जो पुस्तक वितरण करने वाले थे, तो प्रभुपाद उनको ऐसी ट्रेनिंग दी थी, ऐसा प्रशिक्षण दिया था कि वे बता सकते हैं, कोई भी भक्त जितने भक्त थे अगर पूछे, हालांकि समय नहीं होता इतना बताने का, अगर आप इतना बताएंगे तो उतनी देर में जो है वो पुस्तक नहीं बिक पाएगी आप बताएंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप ना बताएं और किसी तरह से पुस्तक थमा दें उसके हाथ में, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए कभी अवसर मिले तो बताने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए आगे। किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी दुर्गति देख रहे थे और प्रभुपाद की कृपा से वे दिग्भ्रमित आत्माओं को उनके दिव्य ज्ञान की आवश्यकता के अभाव से उबारने के लिए घोर प्रयत्न कर रहे थे। पुस्तक वितरण में भी इतनी शक्ति है कि वो आपकी आंखें खोलती है, आप पुस्तकें जो वितरण कर रहे हैं तो ये जो ज्ञान है आपके अंदर भी आता है, आपके चेतना में भी आता है। यहाँ पर ये भी संकेत है कि जो भक्त लोग पुस्तकें वितरण करते हैं सच्चे दिल से, तो प्रभुपाद ने जो पुस्तकों में जो ज्ञान दिया है वो भी उनकी चेतना में आता है, और वो क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इनको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, है? और ये दिव्य ज्ञान दे करके उनको उस अभाव से मैं उबार रहा हूं। तो भक्त लोग घोर प्रयत्न कर रहे हैं, है? क्या उनके दिव्य ज्ञान की आवश्यकता के अभाव से उबारने के लिए घोर प्रयत्न कर रहे हैं। सब सचमुच जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, है? मनुष्य के जीवन की, वो दिव्य ज्ञान की है जो प्रभुपाद ने दिया इन पुस्तकों में आगे। तब नगर नगर घूमकर पुस्तकों के बेचने की विधि की खोज हुई, ये खोजा भक्तों ने, क्या नगर नगर घूमकर। लॉस एंजलिस के कुछ ब्रह्मचारियों को लगा कि मंदिर में बैठकर वे उस समय को नष्ट कर रहे थे जिसका सदुपयोग पुस्तकों के वितरण में हो सकता था, अतः उन्होंने एक गाड़ी में कृष्ण पुस्तकें लाद लीं और वे ऐसे क्षेत्रों में गए जहां वे एक सप्ताह रह सकते थे और सादा जीवन बिताते हुए पुस्तकों के वितरण में जितना चाहे समय लगा सकते थे। इस चलते फिरते संकीर्तन से पुस्तकों की बिक्री में एक और महत्वपूर्ण बाढ़ आई, क्योंकि इससे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें भक्त अपने कार्य में पूरे तन मन से लग सकते थे। ये नया कार्यक्रम शीघ्रता से इस कोण की दुनिया में फैल गया और श्रील प्रभुपाद को ये पसंद आया। तो यहाँ पर जो बताया गया है, एक नई जो विधि है वो क्या खोजी है कि गाड़ी में मतलब भक्त लोग बैठ करके मंदिर से दूर चले जाते, एक सप्ताह तक मंदिर से दूर रहे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि गाड़ी हो या बस हो, जो संकीर्तन बस होती है, संकीर्तन गाड़ी होती है, उसमें भी भक्तों को अपना जो मंगल आरती का कार्यक्रम है और क्लास का कार्यक्रम है वो अपना करना ही चाहिए, है ना। तो ये था, ये था कि भक्त लोग जो है मतलब अगर ये जो प्रभुपाद ने जो सवेरे का जो कार्यक्रम दिया है अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इसमें भी खतरा है, है ना। तो यहाँ जो है ये बताया गया है, इंग्लैंड में यात्रा दल के विषय में आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, इंग्लैंड में यात्रा दल के विषय में आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसको कहते हैं यात्रा दल। मैं समझता हूँ कि वहां के लोगों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अच्छा, लोगों का लिखा, लोगों की, वहां के लोगों की कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वे आप लोगों को अपने घरों में ठहरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखो भक्त लोग, जब जो पब्लिक है वो जब देखती है कि ये लोग जो है गाड़ी में रहते हैं, इनको रहने की इतनी सुविधा नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है, तो अपने घरों में आमंत्रित कर रहे हैं। इंग्लैंड में भी ऐसी स्थिति है। पुस्तकें खरीद रहे हैं, कोई कोई कभी कभी भक्त बन रहे हैं। मेरे लिए ये सब बहुत उत्साहपूर्ण लक्षण है। इसी तरह हर गांव और नगर में रुकते हुए आगे बढ़ते रहो। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में या ऐसा अन्य कोई स्थान हो तो वहां भी केवल कुछ समय के लिए रुको, पुस्तकें वितरित करो और संकीर्तन जुलूस निकालो, उनके प्रश्नों के उत्तर दो, कुछ पर्चे या सूचना पत्र निःशुल्क बांटो, जहां संभव हो प्रसाद या इस तरह की कोई छोटी चीज वितरित करो, और यदि वास्तविक रुचि दिखाई दे तो नगर के लोगों से किसी स्कूल में, किसी के घर में या किसी हॉल में व्याख्यान की व्यवस्था करने की प्रार्थना करो। इस तरह मंजिल या सुविधा की चिंता किए बिना ही अपनी योजना की सफलता के लिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहो। बस उनके संदेश का प्रचार और उनकी पुस्तकों की बिक्री करते हुए जहां कहीं लोगों में रुचि दिखाई दे उनके बीच बढ़ते रहो। हमें वहां समय नष्ट नहीं करना है जहां रुचि ना हो या जहां के लोग अमैत्रीपूर्ण हो। प्रचार के लिए जाने के लिए अन्य बहुत सारे स्थान हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अपने समय की बचत करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ की लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, दुर्भावना दिखाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि उस स्थान को छोड़ दो। जैसे कि समय जब कम होता है, परीक्षा के समय जो है, एग्जामिनेशन के समय, समय तो बिल्कुल सीमित है, 3 घंटे का समय है ना, और आपको जो है प्रश्न दिए गए, 9 प्रश्न दिए गए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 घंटे के अंदर आपको 5 या 6 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, तो आप क्या देखते हैं, जो सरल प्रश्न हो उसी को करते हैं ना, क्योंकि समय तो सीमित है, तो आपको प्रश्न को उत्तर देने हैं। उसी प्रकार से समय बहुत कम है, हमारे जीवन का समय बहुत कम है और काम ज़्यादा करना है, तो फिर ऐसे स्थानों में जाना चाहिए जहाँ के लोग स्वीकार करें और उत्साह दिखाएं, रुचि दिखाएं, वहाँ पर जाना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद कहने लगे थे कि नए केंद्रों की स्थापना अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी, क्योंकि यात्रा दल सारे देश में घूम रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वैंकूवर मंदिर के अध्यक्ष ने यात्रा के लिए एक बस की व्यवस्था कर ली है, तो उन्होंने लिखा, मैं समझता हूँ कि माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारा आंदोलन एक छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। छापामार सैनिक दल है, छापा मार सैनिक दल है ना, माया के विरुद्ध छापा, जहां जहां माया का प्रभाव है तो सैनिक जो है छापा मारते हैं वहां, है ना। जैसे कोई गैर कानूनी काम करता है ना, तो जो सरकारी दल होते हैं वो छापा मारते हैं, भाई गैर कानूनी काम कर रहे हो, है ना, कोई गलत कंपनी जो है कुछ गलत सामान बना रही है, कुछ गलत मिलावट कर रही है किसी चीज की, तो छापा मारते हैं ना, है ना, सरकारी लोग। तो इसी प्रकार से जो प्रभुपाद ने जो सेना बनाई है ये क्या है, छापामार सैनिक दल है, जहाँ ज़्यादा लोग जो है माया में फंसे हुए हैं, है ना, तो वहाँ छापा मारते हैं, है ना, और छापा मारने का मतलब क्या है, पुस्तकों का वितरण करना, है ना। छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। बस द्वारा इस तरह की यात्रा करना, माया को खदेड़ कर संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ जो बात समझ में आती है वो ये है कि प्रभुपाद अपने भक्तों में किस प्रकार की चेतना पैदा कर रहे हैं, सैनिक की चेतना। भक्तों के अंदर कैसी चेतना होनी चाहिए, सैनिक की चेतना होना चाहिए। और सैनिक जो है कैसे होते हैं, वे अपनी सुविधा की चिंता नहीं करते हैं, वे अपने खाने सोने की चिंता नहीं करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता नहीं करते हैं। अब उनकी चिंता होती है कि कैसे युद्ध करें और कैसे शत्रु को खदेड़ें, कैसे शत्रु को पराजित करें और शत्रु के स्थान में कैसे अपना अधिकार जमाएं, सैनिकों की ये चिंता होती है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद की चिंता है कि कृष्ण भावनामृत का जो शासन है वो फैलाया जाए और माया के शासन को दूर भगाया जाए। तो ये चिंता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद को ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि मंदिरों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता भी संकीर्तन यात्रा दलों के साथ प्रचार को जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि सेनापति विषय वैदिक धारणा यह है कि वह सबके आगे की पंक्ति में लड़े, सुरक्षित होकर पीछे ना बैठा रहे। वे देख चुके थे कि किस तरह उनके कुछ प्रमुख शिष्य प्रबंध के कार्यकलापों में फंस कर रह गए थे। इसलिए उन्होंने उन सबको परामर्श दिया कि वे यात्रा करें, प्रचार करें और जहाँ कहीं भी जाएं पुस्तकों का वितरण करें। प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तव में इस्कॉन संस्था इसीलिए विद्यमान है क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता रहा हूँ। इस वृद्धावस्था में भी मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रहा हूँ। अतः आप लोग मेरे उदाहरण का अनुगमन करें और समग्र संसार में व्यापक प्रचार करें, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रतिरूप है। तो हाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं यात्रा हरि बोल हरि। तो हाँ प्रभुपाद जो है यात्रा के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद की यह भी चिंता थी कि वे पुस्तकों को लिखने का काम करें। तो प्रभुपाद ये भी चाहते थे कि अगर कुछ भक्त लोग जो है मेरे जो उत्तराधिकारी हैं ये मेरे कार्य को ले लें कि यात्रा करने का कार्य ले लें, तो मैं एक स्थान में बैठ करके पुस्तकें लिख सकूं। तो पुस्तकें लिखना भी अपने अपने स्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, जब कैलिफोर्निया के एक भक्त ने अपने विवाहित जीवन का परित्याग करके संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए श्रीला प्रभुपाद की अनुमति के लिए लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारिवारिक जीवन का परित्याग करना जरूरी नहीं था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सन्यासी अथवा गृहस्थ है। एक परिवार वाला व्यक्ति भी कभी कभी यात्रा कर सकता था और पुस्तकें वितरित कर सकता था, चाहे वह अकेला हो अथवा अपनी पत्नी के साथ हो। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर पत्नी और परिवार भी कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है? तो गृहस्थ व्यक्ति को परिवार और पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं है, है? और यात्रा कभी कभी कर सकता है। गृहस्थ के लिए तो कुछ बंधन होते हैं अपने परिवार के, तो वो हमेशा यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी यात्रा कर सकता है। तो कैसे, या तो अकेले यात्रा करें या पत्नी के साथ यात्रा करें। आगे, 1972 के अंत के निकट भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के समाचार पत्रक में जो करंधार के सहायक रामेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था, पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम छपे। करंधार जो शब्द है ना, ये वास्तव में कर्णधार है, शब्द है कर्णधार, उसको जो है भक्तों करंधार बोलते हैं। इन कर्णधार का मतलब जानते क्या होता है? कर्णधार का मतलब है जो नौका को खेने वाला हो। आप जिस नौका में बैठे हैं उसको जो खे करके आपकी नौका को किनारे में ले जाए उसे कर्णधार बोलते हैं। तो यहाँ करंधार जो शब्द आया है ये कर्णधार है, है ना? तो कर्णधार के सहायक रामेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था क्या? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का समाचार पत्र और पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम छपे। अब देखिए ये समाचार है, समाचार पत्र का जो है ये कुछ अंश है। 25 से अधिक संकीर्तन यात्रा दलों के देश भर में भ्रमण से जो लाखों बद्ध आत्माओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, पुस्तकों के वितरण में आशातीत सफलता हो रही है। आशातीत का मतलब है जितनी आशा की उससे ज्यादा, जितनी आशा करें उससे ज्यादा सफलता हो रही है। मध्य सितंबर से अब तक हमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तीन भागों में, उस समय तीन भागों में था, अभी तो एक भाग में आता ना लीला पुरुषोत्तम, तीन भागों वाली जो सेट है की 15,000 से अधिक प्रतियां बेची हैं और अगस्त के मध्य से अब तक हमने भगवद गीता की बिना जिल्द 9,000 और सजिल्द 950 प्रतियां बेची हैं। मैक मिलन ने भी गीता की 20,000 प्रतियों में से जो उसने हमसे व्यावसायिक स्तर पर ली थी सबके सब बेच डाली हैं और क्रिसमस की भारी मांग को देखते हुए उसका पुनर्मुद्रण कर रहा है। क्रिसमस की मांग, तो क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। तो क्रिसमस की भारी मांग, मैक मिलन कंपनी जो है भारी मांग को देखते हुए पुनर्मुद्रण पुनः छपाई कर रहा है, क्योंकि ये सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना है, तो सितंबर के महीने से ही जो है मैकमिलन कंपनी ज्यादा किताबें छापेगी क्योंकि क्रिसमस की जो मांग है वो कब आएगी? दिसंबर में आएगी। तो पहले से ही मैकमिलन कंपनी छाप रही है किताबें। पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई, हाँ तो 72 ही तो है, 1972 का ही समय है, तो 72 के अंत में यानी दिसंबर।
पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था भक्तों का, क्योंकि बहुत ज्यादा सफलता मिली, वो क्रिसमस डे, क्रिसमस डे का जो है ना, तो वास्तव में क्रिसमस का मतलब है जो जन्मदिन है उनका, ईसा मसीह का जन्मदिन है, है ना। तो जैसे लगता है कि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं ईसा मसीह कि उनके कारण जो है ये कृष्ण भावना आंदोलन बहुत फैला, पुस्तक वितरण बहुत हुई, है ना। तो लोग जो है, लोगों के पास ऐसा कुछ विशेष संदेश है नहीं, ना वो बाइबल का उतना मतलब संदेश जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जिनमें हर प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें, है ना। तो क्रिसमस के समय उनका जो है एक ही कार्य होता है कि कोई भी नई चीज दिखाई दे तो ले लो और उसको गिफ्ट के रूप में दूसरों को दो। क्रिसमस का जो त्यौहार होता है उसमें ईसाइयों का जो है केवल एकमात्र कार्य होता है, कोई भी नई चीज कहीं भी दिखाई दे तो उसको वो लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं, है ना। और प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं तो प्रभुपाद की पुस्तकें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, बहुत चमक होती है, बहुत आकर्षण होता है पुस्तकों में। तो इन पुस्तकों के आकर्षण से लोग जो है खरीदते, उनका इरादा ये नहीं कि वो मतलब पढ़ेंगे या पढ़ने के लिए दे रहे हैं किसी को, लेकिन एक गिफ्ट के रूप में वो बड़ा अच्छा लगता है, लेना और देना गिफ्ट के रूप में ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी जो है ये पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है वो बहुत शक्तिशाली है, बड़ा प्रभावशाली है। क्रिसमस के त्योहार में जो है वहां ऐसा वातावरण बन जाता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इस किताब में क्या है, वो किताब का जो है रूप रंग देख करके, उसका उसका चमक देख करके वो लेते हैं और बांटते हैं। क्रिसमस के त्योहार में माता है अपने पुत्र को देती है और पुत्र ने देखा, रख लिया, फिर कभी खोला कभी बंद किया, कभी खोला कभी बंद किया, फिर ऐसे एक साल बीत जाते हैं, फिर कभी उसने फिर खोला, फिर चित्र देखा, फिर सोचता है चित्र में क्या है इस तरह से भी जो है ये पुस्तक जो है अपना काम करती है, कि जैसे बीज है अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के कितने सालों के बाद फल लगता है, तो कोई व्यक्ति कृष्ण का संदेश समझ पाता है कई सालों के बाद समझ पाता है, ये पुस्तक जो है उसको मिल जाती है तो वो उसका जो है क्या हो गया कि शुरुआत हो गई इसकी। पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पढ़ लिया आगे। रामेश्वर कह रहे हैं, ये 22 दिसंबर 1972 की बात है कि संयोग से हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस की भीड़ का पता चला। निस्संदेह हमने देखा कि भंडारों में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और ये भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं। भंडार में क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं, गिफ्ट है, कई तरह के गिफ्ट हैं, तो लोग खरीदते हैं। भंडारों में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और ये भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं। मैं बर्बैंक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था। लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए हमारे बीच विकट स्पर्धा चल रही थी और वो चरम उत्कर्ष को पहुंच रही थी। पुरस्कार मतलब वही गिफ्ट है। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर मैंने लगभग $350 एकत्र किए थे और 650 पत्रिकाएं बेची थी। सोचिए, एक व्यक्ति बता रहे, कौन बता रहे हैं, रामेश्वर। 650 पत्रिकाएं बेची थी। रात्रि के लगभग 10 बज रहे थे। मुझे दृढ़ विश्वास था कि इस कौन का नया विश्व रिकॉर्ड था और उस दिन मुझे पछाड़ने वाला संभवता कोई ना था। यद्यपि भंडार 12 बजे तक खुला था किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी और मैंने सोचा कि मुझे घर लौटना चाहिए। घर का मतलब मंदिर, मुझे घर लौटना चाहिए यानी मंदिर। निस्संदेह अन्य सभी लोग जा चुके हैं। 8 बजे के बाद कोई कभी नहीं रुका। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे उनसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था कि मेरे कारण लोगों को, भक्तों को जो है असुविधा हो रही होगी कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं ही सबसे ज्यादा लेट हो रहा हूं, तो वो सोच रहे हैं। 11 बजे तक भंडार पूरी तरह सुना हो गया था। मैं कार में बैठा और वापस घर जाने लगा, घर मतलब मंदिर। मार्ग में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी मिली जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। मैं दुविधा में पड़ गया कि रुकूं या नहीं, क्योंकि उस भंडार में बड़ी भीड़ थी और वो 12 बजे रात तक खुला रहने वाला था। तो वहां पर बड़ा अच्छा अवसर था कि वहां पर भी पुस्तकें वितरण कर सकते, किंतु मैंने निश्चय किया नहीं, मुझे वापस जाना है, क्योंकि अन्य भक्त मेरी प्रतीक्षा में होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। आखिर मैं मंदिर 12 बजने में 10 मिनट शेष रहने पर पहुंचा और सीधे संकीर्तन कक्ष में चला गया, किंतु वहां केवल मधुकंठ सचिव बैठा था। मैंने कहा, अरे क्या सब लोग सो गए? सबने कहा, नहीं अभी तक कोई वापस नहीं आया है। तो क्या वापस आने वालों में सबसे पहला मैं था? ये थी क्रिसमस के पहले दिन की भीड़ की शोध। कौन सी तारीख थी वो? 22 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर की जो है तैयारी में है? मतलब कई दिनों से लोग जो है खरीदने के चक्कर में होते हैं कि क्रिसमस का गिफ्ट खरीदना है ना। यह नितांत अनियोजित थी, किसी ने किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। मतलब कोई स्कीम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं था इस तरह का कि भाई क्या करना है, किसको क्या करना है ना। किसी ने आदेश नहीं दिया था कि इतनी देर तक रुको बाहर, हमने ऐसा स्वेच्छा से किया था। अंत में रात के करीब 1:30 बजे सभी भक्त वापस आ गए थे और हम घेरे में बैठे संकीर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहे थे। संकीर्तन का मानचित्र यानी नक्शा, तो नक्शा बनाया था ना सबने, क्योंकि किसका कितना हुआ है, तो किसका जो है मतलब स्कोर कितना हुआ है, कितना बड़ा है, कितना ज्यादा छोटा है, तो इस नक्शा जो है बनाया था संकीर्तन का। तो संकीर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहे थे। उस रात हम सो नहीं सके, क्योंकि हम सभी बाहर जाने को बहुत आकुल थे। हम सोच रहे थे हमें इतने सारे बद्ध जीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तक बांटेंगे। ये चिंता कि बद्ध जीवों को ये किताब देना ये कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी ये राहत कार्य है। यहाँ कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए है ना, तो राहत कार्य होता है ना, तो उसमें जो है लोगों को निकाला जाता है, कहीं गिर गए गड्ढे में गिर गए हैं, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी की आंखें फूटी हैं, तो राहत कार्य होता है ना। तो पुस्तक वितरण क्या है, उसी प्रकार का राहत कार्य है ना। तो भक्तों को ये चिंता होती है कि कहाँ हमको इतने सारे बद्ध जीव मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। हमारा शोरगुल और अट्टहास मधुरमत समूह जैसा था, उससे अपने कार्यालय के साथ वाले कमरे में सोया किरणधर जाग उठा। कर्णधार जाग उठे, वो लड़खड़ा था, आंखें मलता हमारे कमरे में आया, किंतु जब उसने हम लोगों को और वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखा तो वो ठहाका मारकर हंसने लगा। जबकि सो रहे तो आंखें मतलब बड़ी दिक्कत होती ना, कोई व्यक्ति सो करके उठे, लेकिन जहां देखा कि भाई ऐसा वातावरण है, हंसने लगा ठहाका मारकर और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, कल के लिए तैयार हो जाओ। मतलब रेस्ट करना जरूरी है ताकि शक्ति मिल सके कल के लिए, ये भी जरूरी है। इस तरह हमने 22, 23, 24 दिसंबर की 3 दिन की स्पर्धा दौड़ दौड़ी, कंपटीशन की जो है हमने जो है मैं दौड़। इसके पूर्व हमारे आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी। जिस दिन 25 से 40 तक पुस्तकें बिक जाती थी वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता था, किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5 से 6 हजार पुस्तकें बेच रहे थे। एक मंदिर ने मात्र इन 3 दिनों में लगभग 18 हजार पुस्तकें वितरित की थी। तो आज एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा। इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या है, जो पुत्र प्रदान करे। लेकिन पुत्र का वास्तव में जो अर्थ होता है वो होता है कि जो उत्तराधिकारी, जो योग्य उत्तराधिकारी होता है तो उसी को ही पुत्र माना जाता है ना। जैसे राजाएं, जो राजा लोग होते थे तो उनको चिंता होती थी कि उनको कोई योग्य उत्तराधिकारी मिले जो प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा की रक्षा दोनों प्रकार से करे, भौतिक रूप में करे, आध्यात्मिक रूप में भी करे, तो राजाओं को बड़ी चिंता होती थी। उसी प्रकार से इस आंदोलन के भी जो आचार्य होते हैं उनको भी चिंता होती है कि उनको योग्य उत्तराधिकारी मिले। तो पुत्र जरूरी नहीं है कि मतलब पत्नी से ही मतलब पैदा किया जाए, बल्कि योग्य उत्तराधिकारी जो भी मतलब प्राप्त होता है तो वो जो है मतलब होना चाहिए। तो आज की जो एकादशी है वो ये इच्छा पूरी करने वाली है आप समझ रहे। और दिल्ली मंदिर की भी जो है आवश्यकता है कि योग्य वतन अधिकारी मिले, जैसे मोहन रूपा प्रभु कर काम कर रहे हैं। तो पहली बार जो है विश्व के इतिहास में ऐसा कार्य हुआ है जो मोहन रूपा प्रभु ने शुरू किया है, तो योग्य उत्तराधिकारी मिलना चाहिए, है ना, कि विश्व में जो है सबसे सर्वोच्च स्थान पर हैं मोहन रूपा प्रभु, कि एक व्यक्ति से हजारों हजारों की दान प्रायोजित कराते हैं। तो भविष्य के लिए जो है तो आज की जो तिथि है वो ऐसी है जो कि हमारी इस इच्छा को पूरी करे, है ना। जैसे मधुसूदन प्रभु हैं तो विश्व में उनका भी सर्वोच्च स्थान है कि सड़क में जो है व्यक्तिगत रूप से पुस्तकें वितरण करते हैं, तो वो भी जो है टॉप है विश्व में। हरि बोल। तो दिल्ली मंदिर को मतलब ऐसे उत्तराधिकारियों की आवश्यकता है, केवल ये नहीं है कि यह सब भार मोहन रूपा प्रभु के ऊपर है कि बस वही करते रहेंगे, है ना। तो आगे जो है मतलब और भी भक्त हो, तो आज की जो एकादशी है वो इस प्रकार की है। इसका जो महात्म है तो उसमें लिखा हुआ है कि भद्रावती पुरी के राजा शुक्रतुमान थे, जिनकी रानी सेव्या थी, चूंकि राजा पुत्रहीन थे तो आत्महत्या का विचार कर रहे थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि राजा को सबसे बड़ी चिंता होती है कि मतलब ऐसा पुत्र हो वंश परंपरा में जो कि उस राज्य को संभाल सके और सही तरीके से प्रजा को जो है मार्गदर्शन दे सके, भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के मार्गदर्शन दे सके, है ना। तो आत्महत्या का विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर राजा ने विचार किया कि आत्महत्या करने से तो और मुझे दुख मिलेगा, क्योंकि एक अलग से वो पाप कर्म बन जाएगा, उसका मुझे दंड मिलेगा, तो विचार त्याग दिया। तो जब वन में गए तो वन में सोचते रहे कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, तो एक सरोवर दिखाई दिया, वहां तपस्वी मुनि बैठे हुए थे। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम विश्व देवता हैं और आज पुत्रदा एकादशी है। तो फिर उनकी आज्ञा से राजा ने इसका जो है व्रत किया, और इस व्रत से जो है उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी बना और सही तरीके से उसने राज्य चलाया। तो ये जो कथा है एकादशी के महात्म्य की, इसका फल ये लिखा हुआ है, पठनात् श्रवणात् राजन् अश्वमेधः फलम् लभे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि ये महात्म्य पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। तो ये कथाएं मतलब अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फल है। तो आज का जो विषय था तो वो हमने इसकी चर्चा की है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो 10 मिनट का समय तो होना ही चाहिए जिसमें कि आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो या कोई प्रश्न हो, तो मैं आप लोगों से जो है चाहता हूँ कि किसी का है कोई प्रश्न या चर्चा, या फिर मैं प्रश्न करूँ। मैं प्रश्न करूँ, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, आज जो एकादशी है ये पुत्रदा एकादशी है, ठीक है, तो हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, हम लोगों को तो पुत्र की आवश्यकता नहीं ना, हम लोग पुत्र सोचते हैं, पुत्र हो, तो फिर इसका जो है अर्थ है दूसरे प्रकार से भी होता है, वो क्या है, पुत्रदाय कौन बताएगा, योग्य उत्तराधिकारी, है ना। तो योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, है ना, क्योंकि तो बहुत से कार्य हैं जो कि इस आंदोलन में खोजे गए हैं और वो नए नए तरीके खोजे गए हैं प्रचार के, या पुस्तकों को वितरण करने के नए नए तरीके खोजे गए हैं, तो इसमें भी योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, है ना। तो आज के दिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, वैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं कि पुस्तकों को वितरण करने में समर्पित भक्तों की संख्या बढ़े, है ना। तो आज को जो का जो दिन है ये भी इस इच्छा को पूरा करने वाला है, ठीक है ना, कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है इसको फैलाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी आए, है ना, क्योंकि जो भक्त अभी ज्यादा उम्र के हो गए हैं और उनके शरीर की शक्ति घट गई है, है ना, तो आगे चल करके तो मतलब क्या है कि सब रिटायर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो है इस कार्य को मतलब हाथ में लें और जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आवश्यकता है, ठीक है ना। कि और नए नए भक्त आए और नए नए भक्त जुड़े हैं और अधिक से अधिक समर्पित हों इस आंदोलन के लिए, तो आज का जो दिन है ये इस इच्छा की पूरी पूर्ति करता है। ये जो है ये पुत्रदाय एकादशी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रभुपाद ने जो है पुस्तक वितरण की क्या कुछ विधियां बताएं कि तुम लोगों को कैसे पुस्तक वितरण करना है?
नहीं बताए।
लेकिन प्रभुपाद क्या कहते थे, मेरी पुस्तकें तुम लोग वितरित नहीं कर रहे हो। प्रभुपाद जो है उनके ऊपर ये भार डालते थे, चिंता डालते थे। क्या चिंता डालते थे? कि मेरी पुस्तकों को तुम वितरित नहीं कर रहे हो। और प्रभुपाद ने जो जिस कार्य में ज्यादा रुचि दिखाई थी वो क्या था, छपाई का कार्य, पुस्तकों की छपाई। अब पुस्तकों की छपाई हो गई और लाखों किताबें जो है भरी हैं, गोडाउन में भरी हैं, तो इससे क्या हुआ, प्रभुपाद ने चिंता डाल दी भक्तों के ऊपर, चिंता डाल दी है कि कैसे जो है इनको वितरण करना है। अब ये आपका जो है होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे वितरित करना है इन पुस्तकों को, है ना। तो शुरू शुरू में भक्तों को बड़ा संकोच लगता था कि कैसे किताबें बांटी जाएंगी। तो फिर उन्होंने कुछ हिम्मत की थी सड़क में जाने की, और शुरू में जो पत्रिका बैक टू गॉड है पत्रिका है उसको बेचना शुरू किया था। तो पत्रिका जो है कम कीमत की होती है और जो है उसका आकार भी बड़ा होता है, तो देखने में भी जो है बड़ी आकर्षक होती है, और सस्ती होने के कारण भक्तों ने जब इसको बेचना शुरू किया तो बड़ी आसानी से बिकी। तो बैक टू गॉडहेड पत्रिका वो जो है मतलब बेचने लगी सड़कों में, लेकिन जो मोटी किताब है तो वो कैसे बिकेगी, उनके दिमाग में जो है ये बात नहीं घुस रही थी कि लोग मोटी किताब लेंगे, है ना। तो मोटी किताब सबसे पहले उन्होंने जब प्रयोग किया बेचने का, तो पता कहाँ पर प्रयोग किया था बेचने का, है पेट्रोल पंप में, है ना। हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी, हिम्मत करके उन्होंने जो है मतलब बात किया। जब पेट्रोल भरा लिया गाड़ी में और पैसे देने का समय आया तो सुझाव दिया, भाई पैसे की जगह ये किताब ले सकते हो। तो जो व्यक्ति था पैसा लेने वाला वो तो निर्णय नहीं कर सकता था, बोला मैं बात करता हूँ अपने बॉस से। तो उसने बॉस को दिखाई किताब, तो वो तैयार हो गया, ठीक है ऑलराइट। तो पहली बार उनको आश्चर्य हुआ कि किताब बिक रही है ना, तो पहली बार पेट्रोल पंप में। तो फिर पेट्रोल पंप में फिर वो ये प्रयोग करने लगे, तो नए पेट्रोल पंप में जाते थे और पेट्रोल भरा लेते थे और उसके बाद जब सुझाव देते थे कि भाई पैसे की जगह ये किताब ले सकते, लेना चाहोगे, है ना, विल यू लाइक टू टेक दिस बुक इन प्लेस ऑफ मनी, तो वो ले लेते थे। अब पेट्रोल पंप भी कितने मिलेंगे, पेट्रोल पंप तो इतने नहीं मिलेंगे, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई और कहाँ इसका प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से फिर वो दुकानों में गए, स्टोर में गए, तो वहाँ भी किताब दी, तो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रयोग किया उनको सफलता मिली, है ना, क्योंकि प्रभुपाद की उनमें शक्ति थी, है प्रभुपाद की इच्छा थी उसके अंदर, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी उसके अंदर, कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी दया छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, है ना। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की शक्ति थी, इसलिए पुस्तकें जो है मतलब वितरित हुई, है ना। तो इस तरह से पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हुआ। और अभी तो मेरे ख्याल से अब किताबें तो अब नहीं इशू होंगी, 31 दिसंबर तक इशू होने का था। अब आप लोगों ने जितनी किताबें ली हैं अब उनका पैसा जमा करना है और किसी प्रकार से भी दिल्ली मंदिर को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। विशेष रूप से ये पार्थ सारथी का मंदिर है, पार्थ के जो सारथी हैं, अर्जुन के जो सारथी हैं, अर्जुन के घोड़ों को जो हांकते हैं, उनका ये मंदिर है जिन्होंने स्वयं गीता अर्जुन को सुनाई। तो चूंकि उनका मंदिर है तो उनकी जो गीता है जिसमें प्रभुपाद ने भक्ति विधान तात्पर्य दिए हैं वो इस मंदिर से सबसे ज्यादा वितरित होनी चाहिए। अरे वो पार्थ सारथी मंदिर है,
मायापुर जो है,
हैं
मायापुर हमारे से कंपटीशन कर रहे हैं,
हाँ
बहुत आगे।
बहुत आगे हैं, गोवर्धन प्रभु कह रहे हैं कि बहुत आगे हैं, लेकिन शायद आप लोग आगे हो सकते हैं। जितनी किताबें आपने ली हैं उनका अगर पैसा जमा कर दें तो संभावना है। कम से कम भगवद गीता के मामले में हमारा जो पार्थसारथी का जो मंदिर है वो सबसे आगे होना चाहिए। कम से कम गीता की पुस्तकें तो हमारे मंदिर से सबसे ज्यादा वितरित होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पार्थसारथी अर्चा विग्रह और किसी दुनिया में किसी मंदिर में नहीं है, शायद है चेन्नई में है। अच्छा चेन्नई में है, चलो चेन्नई में है तो अभी तो वो नया है ना। नया हमारा मंदिर पुराना है। तो आप लोग जो है इस विषय में और किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है? हाँ जी। हाँ, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे भगवान राम की सेना में जो हनुमान जी जैसे योद्धा थे तो उस पुल को बनाने के लिए बड़े बड़े पर्वत के शिखर ला रहे थे, पुल बन रहा था, लेकिन गिलहरी थी तो अभी अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। तो भगवान क्या देखते हैं कि आपकी 100% शक्ति आप लगा रहे हैं अगर उनके आंदोलन में, तो आपको भगवान की दृष्टि में पूरा जो है श्रेय महत्व मिलेगा। भगवान की दृष्टि में पूरा महत्व है, एक गिलहरी का और हनुमान जी का दोनों का बराबर महत्व है। हरि बोल। आप अपनी जितनी भी शक्ति हो लगाइए, जितनी बुद्धि हो उसको लगाइए, है ना। तो ऐसा ही है, उसमें भी महत्व दिया जाता है जो भी भक्त करते हैं। और रोज मैं पढ़ता भी हूँ, तो सबसे पहले तो उन्हीं का नाम बोला जाता है जिनका सबसे कम होता है। किसी ने अगर एक गीता भी वितरण की है तो सबसे पहले उसका नाम होता है, फिर 5 गीता, फिर 10 गीता, इस तरह से होता है। तो रोज स्कोर बढ़ा जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि कम है तो उसको जो है मतलब कम महत्व दिया जाए, ज्यादा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जिनका कम होता है उनका भी महत्व कम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन यह है कि भगवान देखते हैं कि आप अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। प्रभुपाद के समय में ऐसा था कि किसी भक्त ने कहा कि प्रभु, वो रो रहा था, प्रभुपाद मैंने जो है मतलब 6 घंटा 8 घंटा बहुत परिश्रम किया, एक भी किताब नहीं बिकी। तो प्रभुपाद ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो सेवा है, तुम्हारा जो परिश्रम है वो कृष्ण की नजरों में महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत शक्ति ठाकुर है, तो जो नए भक्त थे उनको भी भेजते थे पुस्तकें या पत्रिकाएं भेजने, समाचार पत्र भेजने के लिए, तो कुछ ही समाचार पत्र भेज के आते थे, कुछ पैसे लेके आते थे, तो बहुत प्रसन्न होते थे। दोनों बातें हैं, मतलब प्रभुपाद बहुत बड़ा भी सोचते थे कि भाई बड़े से बड़ा मतलब कार्य हो, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं उनको भी जो है कम महत्व नहीं देते थे। प्रभुपाद की दृष्टि जो है इतनी व्यापक थी कि छोटे को भी जो है उन्होंने कम महत्व नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ जी माता जी। मंदिर से बुक नहीं मिली और
जैसे कि फिर भी हम लक्ष्मी ले
सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी आप ले सकते हैं। अगर कोई पैसा देता है कि भाई पुस्तकें बांट देना और वो पुस्तकें नहीं ले रहा है, तो आप जो है पुस्तक वो पैसा जो है उस पुस्तकों में आप डाल सकते हैं और ये पुस्तकें जो है फिर बांटी जा सकती हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री ग्रंथराज श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्री पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।